खुशबू या बदबू, सफल जिंदगी का राज। यूहन्ना की इंजील 12 पहली आयत से 11 आयत तक। हर इंसान के दिल में एक गहरी ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश क्या है? ये कि मेरी जिंदगी सफल हो, मेरा जीवन कामयाब निकले। मेरी जिंदगी किस तरह कामयाब हो सकती है? यूहन्ना की इंजील 12 में इसका अजीब और गरीब जवाब मिलता है, एक जवाब जो आम सोच से कहीं दूर है। आइए हम इस पर गौर करें। लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने के बाद ईसा मसीह लाजर के गांव बना बैतानिया से चला गया था। वो क्यों चला गया था? उसके मुखालिफ ये मौजजा देखकर खुश नहीं थे, इसके उलट वो उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। ईसा मसीह उनके मंसूबे जानता था, इसलिए वो चला गया। उसे मालूम तो था कि उसे पकड़ा जाएगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब तक खिदमत के कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ये बात जहन में रखकर वो कुछ देर के लिए कहीं और खिदमत करने लगा। लेकिन एक दिन वो दोबारा बैतनिया पहुंचा। ये खबर सूखे हुए जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने ईसा मसीह को दावत देकर खाने का खास इंतजाम किया। अब ध्यान दें, ये दावत लाजर की तरफ से नहीं थी, किसी और ने अपने घर में ये इंतजाम करवाया। तो भी मर्था आकर मदद करने में जुट गई। ये बात हमें एक अहम सबक सिखाती है। सबक क्या है? सबक ये है कि मर्था का सा जोश अपनाओ। मर्था का सा जोश अपनाओ। मर्था क्यों ईसा मसीह की खिदमत करने लगी, हालांकि ये ज़ियाफ़त उसके अपने घर में नहीं थी? जिसे ईसा मसीह की मोहब्बत पकड़कर शागिर्द बना लेती है, वो खुशी से खिदमत करता है। उसे अपनी ही इज्जत की फिक्र नहीं रहती। तो मर्था इतने जोश से क्यों इस खिदमत में लग गई? इसलिए कि वो ईसा मसीह के लिए शदीद मोहब्बत महसूस करती थी। कोई भी काम बोझ नहीं लगता था। एक औरत का जिक्र है जो अपने शौहर से नफरत रखती थी। वो हर फर्ज अदा तो करती थी, मगर बड़ी मुश्किल से। मिसाल के तौर पर, बीवी को रोजाना 6 बजे सुबह तक उसका नाश्ता तैयार रखना था। इस किस्म का काम उसे हमेशा जुल्म और ज्यादती लगता था, और वो उसके तहत कुढ़ती रहती थी। एक दिन शौहर वफात पा गया और होते होते औरत की किसी और से शादी हुई। नया शौहर हलीम था और उनका आपस में प्यार बढ़ता गया। एक दिन बीवी को अलमारी से एक पुरानी कापी मिली, जिसमें पुराने शौहर के तमाम हुक्म दर्ज थे। उसमें ये भी लिखा था कि बीवी को हर सूरत में 6 बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार रखना है। तब औरत को एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसने सोचा, अब भी मैं अपने शौहर के लिए सुबह 6 बजे नाश्ता बनाती हूँ, अब भी मैं ये सारे हुक्म पूरे करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी दिक्कत महसूस न की। अब तो मैं इससे ज्यादा मुश्किल काम करती हूँ। आपका क्या ख्याल है, उसने क्यों कभी दिक्कत महसूस नहीं की थी? उसे इसलिए दिक्कत नहीं थी कि वो अपने नए शौहर से शदीद मोहब्बत रखती थी। मोहब्बत के बायस कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता था। देखो, मर्था उस औरत की तरह थी। वो अपने आका को इतनी प्यार करती थी कि किसी भी काम में दिक्कत महसूस नहीं होती थी। अब तो वो ये काम करते वक्त बड़ी खुशी महसूस करती थी, यहां तक कि वो दूसरे के घर में गई ताकि अपने आका की खिदमत करे। यही ईसा मसीह और शरीयत में फर्क है। शरीयत हमें बताती रहती है कि हमें क्या करना है, और हम जानते भी हैं कि उसके हुक्म सही हैं। लेकिन हम हमेशा कुढ़ते रहते हैं। इसके मुकाबले में जब ईसा मसीह हमारे दिलों में बसता है तो हम ये हुक्म खुशी से सरंजाम देते हैं। लेकिन क्यों हम ये हुक्म क्यों खुशी से सरंजाम देते हैं? इसलिए कि उसकी मोहब्बत और हजूरी हमारे अंदर रहती है। तब हम खुद ब खुद ये काम करना चाहते हैं और हम दुख महसूस करते हैं जब कभी इसमें फेल हो जाते हैं। क्या आपके दिल में ये मोहब्बत बसती है? क्या ईसा मसीह आपके दिल में बसता है? जब वो हमारे दिल में बसता है तो हमें सचमुच आज़ादी हासिल है। वो आज़ादी जो सिर्फ और सिर्फ अंजील की खुशखबरी से मिलती है। लाजर भी खाने में शरीक था। अब तक वो लोगों के ध्यान का मरकज रहा था। अब तक सब हैरान थे कि कफन में लिपटा हुआ ये आदमी किस तरह कब्र में से निकला था। तब एक वाक्या हुआ जो हमें एक और सबक सिखाता है। सबक क्या था? सबक ये था कि मरियम जैसे दीवाना हो जाओ, मरियम जैसे दीवाना हो जाओ। अचानक लाजर और मर्था की बहन मरियम कमरे में दाखिल हुई। वो बेचैन थी। उसके हाथ में नहायत कीमती इत्र का इत्रदान था। अब उसने सारे मेहमानों के सामने इत्रदान का मुंह तोड़कर पूरा इत्र उस्ताद पर उंडेल दिया। फिर पांव पर टपकते तेल को अपने बालों से पूंछकर खुशक किया। मेजबान हक्का बक्का रह गए। ये कैसी हरकत थी? हाँ, ये थी कैसी हरकत। यहां की तरह खवातीन अपने बालों को खुले कभी नहीं रखती थीं। फिर किसी के पांव को अपने बालों से पूंछना, ऐसी हरकत कोई नहीं करता था। गुलाम भी ऐसी हरकत नहीं करते थे। लेकिन मरियम को कोई परवाह नहीं थी। मरियम को परवाह क्यों नहीं थी? ऐसा काम सिर्फ वो करता है जो किसी के बारे में इतना पागल है कि उसे दूसरों की परवाह ही नहीं रहती। एक और मौके पर मरियम ईसा मसीह की बातों से इस कदर मुतासर हुई थी कि मर्था को उसे झिड़की देनी पड़ी थी, क्योंकि उस्ताद की बातों के जादू में आकर वो मेजबानों की खिदमत करना भूल गई थी। ईसा मसीह की हजूरी यूं उसके दिमाग पर बैठ गई थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। क्या आप ईसा मसीह के बायस इस तरह पागल हो गए हैं? एक और बात मरियम के जहन में जरूर थी। इसराइल में तीन किस्म के लोगों के सर पर तेल उंडेला जाता था, बादशाह पर, नबी पर और इमाम पर। तेल क्यों उनके सर पर उंडेला जाता था? इससे उन्हें अपनी खिदमत के लिए मखसूस किया जाता था। अलमसी का मतलब ही ये है, यानी अलमसी वो है जिसे मसा किया गया है, जिस पर तेल उंडेल दिया गया है, जो खुदा से एक खास काम के लिए मखसूस किया गया है। मरियम को यकीन था कि ईसा मसीह ये सब कुछ है। वो मेरा बादशाह, मेरा नबी, मेरा इमाम है। उसे यकीन था कि यही अल मसीह है, वो हस्ती जो मुझे मेरे गुनाहों से रिहा करेगा, जो मुझे फरदौस में दाखिल होने के काबिल बना देगा। इसी हस्ती के सामने हम किस तरह ठंडे दिल खड़े रह सकते हैं? जब हम ईसा मसीह के पक्के शागिर्द हो जाते हैं तब हम पागल हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। तब उसके पांव में झुककर अपने बालों से उन्हें पोंछना अजीब या नामुनासिब नहीं लगता। मैं दोहराता हूं, मर्था का सा जोश अपनाओ। दूसरे, मरियम जैसे दीवाना हो जाओ। अब हम एक तीसरा सबक सीखते हैं, ये कि अपनी हरकतों से खुशबू फैलाओ, अपनी हरकतों से खुशबू फैलाओ। जब मरियम ने ये इत्र उंडेल दिया तो खुशबू घर के कोने कोने तक पहुंच गई। मरियम की ये हरकत छुपी ना रही। वो तो सब पर जाहिर हुए। इससे हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? जब हम ईसा मसीह के बायस पागल हो जाते हैं तो इसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। क्या आप इस तरह पागल हो गए हैं कि आपसे खुशबू फैल रही है? या क्या आपकी बदबू लोगों को भगा देती है? दूसरा सवाल, किस तरह पता चलता है कि हमसे खुशबू फैलती है? ये इससे पता चलता है कि हम मसीह के पांव पोंछ देते हैं। ध्यान दो, मरियम ने सर को नहीं पोंछ दिया बल्कि पांव को। मरियम ने क्यों सर को नहीं बल्कि पांव को पोंछ दिया? पोंछने का ये काम हलीमी का काम है। जो ये काम करता है वो अपने आप को सर को पोंछने के लायक नहीं समझता। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे बहुत खुशबू फैलती है, लेकिन कुछ फूल देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं जबकि उनकी खुशबू बिल्कुल नहीं होती। बहुत से ईमानदार ऐसे फीके होते हैं, उनसे मालूम नहीं होता कि वो ईसा मसीह के शागिर्द हैं। मालूम क्यों नहीं होता कि वो ईसा मसीह के शागिर्द हैं? उन्होंने कभी अपने बालों से उसके पांव नहीं पोंछे। ऐसे लोगों का ईमान बेमानी है। पांव पोंछना इतना मुश्किल क्यों होता है? पांव गंदे रास्तों पर चलते हैं, इसलिए वो धूल और गंद से लथपथ हो जाते हैं। इसलिए लोग कदीम जमाने में अपनी हलीमी जाहिर करते थे जब वो किसी के पांव को धोकर पोंछते थे। साथ साथ वो दूसरे की खास इज्जत करते थे। तो आज हम किस तरह मसीह के पांव पोंछ सकते हैं? आज हम जरूरतमंदों की खिदमत करने से उसके पांव पोंछ सकते हैं। दूसरों पर राज करना ये मसीह की राह नहीं है। अपने आप को दूसरों से छोटा समझना यही ईसा मसीह की राह है। क्या ये एक ऐसी बात नहीं है जो उसके बहुत से शागिर्द भूल गए हैं? क्या अजब जब उनकी जिंदगी फीकी और नाकाम रह जाती है। अब ध्यान दें, जब मरियम ने अपने बालों से अपने आका के पांव पोंछकर खुशक किए तो उसके बालों के साथ क्या हुआ? अपने बालों से उसके पांव पोंछने से ये खुशबू मरियम के बालों में भी आ गई। सो जब हम ईसा मसीह के पांव पोंछते हैं तो हमारे बालों के साथ क्या हो जाता है? जब हम उसके पांव को पोंछते हैं तो उसकी खुशबू हमारे बालों में भी आ जाती है। वो खुशबू जो हमें उसकी याद दिलाती है, वो महक जो दूसरों में भी फैल जाती है। यही हमारी जिंदगी का असल मकसद है कि हम अपने आका की खुशबू दूसरों में फैलाएं। मैं दोहराता हूं, मर्था का सा जोश अपनाओ, मरियम जैसे दीवाना हो जाओ और अपनी हरकतों से खुशबू फैलाओ। अब एक चौथा सबक, मोहब्बत से खाली सोच से दूर रहो। मोहब्बत से खाली सोच से दूर रहो। इत्र की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब ये खुशबू सूंघ सूंघ कर तरोताजा हो गए। सब खुशबू के जादू में आ गए। क्या सचमुच सब? नहीं, एक नाखुश हुआ। ईसा मसीह का शागिर्द यहूदा इस्करियोती गुस्से हुआ। उसने एतराज किया, इस इत्र की कीमत चांदी के 300 सिक्के थी, इसे क्यों नहीं बेचा गया ताकि इसके पैसे गरीबों को दिए जाते? क्या ये बात सच नहीं थी? जरूर कुछ बातें सच तो होती हैं, मगर फिर भी कुछ मौकों पर गलत साबित होती हैं। ये एक ऐसा मौका था। चांदी के 300 सिक्कों की क्या कीमत थी? उस जमाने में मजदूर दिन में 1 सिक्का कमाता था। गर्ज वो साल में लगभग 300 सिक्के कमा सकता था। मतलब है ये इत्र काफी महंगा था। जो इत्र मरियम ने उंडेल दिया था وہ بیش قیمت تھا۔ کیا یہودا نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ اسے غریبوں کی فکر تھی؟ نہیں، اصل میں وہ چور تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے شاگردوں کو راستے میں ملتے تھے، انہیں وہ سنبھالتا تھا۔ کچھ نہ کچھ وہ اپنے لیے نکالتا رہتا تھا۔ پھر بھی کیا اس کی بات درست نہیں تھی؟ کیا مریم یہ عطر بیچنے سے غریبوں کی بہت مدد نہیں کر سکتی تھی؟ عیسیٰ مسیح کا جواب ہمیں چونکا دیتا ہے۔ اس نے فرمایا، اسے چھوڑ دے، اس نے میری تدفین کی تیاری کے لیے یہ کیا ہے۔ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا بے شک اچھا ہے، لیکن ایسا کام کبھی ہمارے دھیان کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ خود عیسیٰ مسیح ہماری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ اسی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے اور اسی کی محبت سب کچھ ہے۔ یوں پولس رسول فرماتا ہے، اگر میں اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں، بلکہ اپنا بدن جلائے جانے کے لیے دے دوں، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو، تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ پہلے کرنتھیوں کا خط 13:3۔ اس میں مریم ایک اچھا نمونہ ہے۔ وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم بات کیا ہے۔ بے شک معذوروں اور غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہم محبت رکھیں، کہ ہم عیسیٰ مسیح کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائیں، کہ ہم اسے دیکھ کر اتنے پاگل ہو جائیں کہ ہماری بے عزتی ہونے پر بھی ہمیں پرواہی نہ ہو۔ مریم کو یہ لاپرواہی حاصل ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا آقا سب کچھ ہے، وہ میری زندگی کا سر چشمہ، مرکز اور منزل ہے، اس لیے میں اس کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرتی ہوں۔ کیا عیسیٰ مسیح سچ مچ آپ کا آقا ہے؟ جب آپ کو اس کا خیال آتا ہے، تو کیا آپ کے دل میں مریم کا سا ولولہ ابھر آتا ہے؟ کیا جب اس کا خیال آتا ہے تو آپ دیوانہ ہو جاتے ہیں؟ رہی یہ سوال کہ میرا کیا جواب ہے؟ اتنے میں ارد گرد کے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ مسیح وہاں ہے، اور وہ اس سے ملنے آئے۔ اس کے علاوہ وہ لازر سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر رہنما امام لازر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان میں سے چلے گئے اور عیسیٰ مسیح پر ایمان لے آئے تھے۔ اب دیکھو کہ کس طرح کے لوگ عیسیٰ مسیح سے ملنے آئے۔ کچھ نہ اس کے خلاف نہ اس کے حق میں تھے، وہ بس تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے اسے دیکھ کر ایمان لائے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے دشمن تھے۔ زیادہ تر رہنما اس کے دشمن تھے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے اپنے لوگ عیسیٰ مسیح کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ یہودا کی طرح ہوں، اس کی طرح جو مرتھا اور مریم کی سی محبت نہیں رکھتا تھا، جو ٹھنڈے دل سے اندازہ لگاتا رہتا تھا کہ مجھے استاد سے کیا فائدہ ملے گا۔ لیکن شاید آپ ان لوگوں جیسے ہوں جو صرف تماشا دیکھنے اس کے پاس آئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سب مرتھا کی طرح ہوں، جو اپنی محبت پورے جوش سے خدمت کرنے سے دکھاتی تھی، کہ ہم مریم جیسے دیوانہ ہوں جس کی خدمت سے کونے کونے تک خوشبو پھیل گئی۔ یوحنا کی انجیل 12:1-11۔ فصح کی عید میں ابھی 6 دن باقی تھے کہ عیسیٰ بیتھانیہ پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی जहां उस लाजर का घर था जिसे ईसा ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहां उसके लिए एक खास खाना बनाया गया। मर्था खाने वालों की खिदमत कर रही थी, जबकि लाजर ईसा और बाकी मेहमानों के साथ खाने में शरीक था। फिर मरियम ने आधा लीटर खालिस चटामासी का निहायत कीमती इत्र लेकर ईसा के पांव पर उंडेल दिया और उन्हें अपने बालों से पोंछकर खुशक किया। खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन ईसा के शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने एतराज किया। बाद में उसी ने ईसा को दुश्मन के हवाले कर दिया। उसने कहा, इस इत्र की कीमत चांदी के 300 सिक्के थी, इसे क्यों नहीं बेचा गया ताकि इसके पैसे गरीबों को दिए जाते। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे गरीबों की फिक्र थी, असल में वो चोर था। वो शागिर्दों का खजानची था और जमा शुदा पैसों में से बददियानती करता रहता था। लेकिन ईसा ने कहा, उसे छोड़ दे, उसने मेरी तदफीन की तैयारी के लिए ये किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। इतने में यहूदियों की बड़ी तादाद को मालूम हुआ कि ईसा वहां है। वो न सिर्फ ईसा से मिलने के लिए आए, बल्कि लाजर से भी, जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। इसलिए रानुमा इमामों ने लाजर को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से यहूदी उनमें से चले गए और ईसा पर ईमान ले आए थे।